السلام عليكم،
وعليكم السلام فراري علی رضا
کیسی
میاں،
ہیں؟ ٹھیک ہیں، جدول حل کر کے ٹائم پاس کر رہی ہیں.
یوں ہی بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہی ہے، کیوں؟
شم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
ہاں ٹھیک ہی ہیں، ابھی ریٹائرمنٹ کی عادت نہیں ہوئی ہے. جب کام پر جاتے تھے تو زبردستی اٹھا کر بھیجتی تھی، لیکن اب تو ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. یہ بتاؤ، یہ پھول کس لیے لائے ہو؟
شایان صاحب ہیں؟
بالکل ہیں، ضرور تمہیں دیکھ کر خوش بھی ہوں گے. شایان صاحب، آپ کے مہمان آئے ہیں.
مہمان؟ یہ مہمان کون ہے؟
لیجیے، یہ میری طرف سے شم صاحب کو دیجیے گا. اور ہاں، ان سے کہیے گا کہ مجھے ان پر حسد ہوتا ہے. مجھے خوشی ہوئی سن کر کے وہ ریٹائر ہو گئے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بہت بہت خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ. میں نے سوچا ہی نہیں تھا میری واپسی پر ایسا استقبال کریں گے.
مجھے یقین تھا واپس آؤ گے. بیٹھو. دن کے اجالے کی طرح میرے لیے واضح تھا کہ تم آؤ گے. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا کیا کھاؤ گے، منگواؤں؟
میں رخصت ہونے آیا تھا.
میرے دل کو بہلانے کے لیے ہی صحیح تھوڑی دیر سمجھنے دیتے کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہو چکا ہے. بعد میں بتاتے جوانی کا علاج کیا ہے.
معاف کیجیے گا کہ میں ابھی جوان ہوں.
مجھے اندازہ تھا، دروازے سے جب اندر آئے تھے تو لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مصیبت اپنے اوپر ڈالو گے. شاید تم نہ جانو، لیکن تم ایک بہانے کی تلاش میں ہو جس سے اپنے اوپر مصیبت ڈالو، اور جیسے چل رہے ہو تم ضرور کامیاب ہو گئے.
لیجیے یہ آپ کے لیے.
سود کے پیسوں سے لیا ہے؟
نہیں، اپنے پیسوں سے. وہ پیسے جو محنت کر کے کمائے ہیں، اور ایک ایسے شخص سے لیا ہے جس نے اب تک ایک بھی حرام کا پیسہ نہیں کمایا ہے.
اتنی تعریفیں کرنے کے باوجود تم جانتے ہو کہ پھر بھی یہ پھول قبول نہیں کر سکتا.
کیوں سب کچھ بگاڑنا چاہتے ہیں جبکہ یہ سب کچھ اچھے اور مناسب انداز سے چل رہا ہے؟
اس لیے کہ جب غلط پیسہ کسی کی زندگی میں آ گیا تو اس کے پورے پیسوں سے مل جاتا ہے.
میں نے اب تک کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا ہے، اس لیے میرا پیسہ اب تک حلال ہے.
اگر اجازت دو تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں.
جناب علی، میری کیا حیثیت اور بساط جو آپ کو اجازت دوں یا
دیکھو
نہ؟
بیٹا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو اور صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا کام عقل، شریعت اور اخلاق کے خلاف ہے.
میں خود جو کچھ ٹھیک سمجھتا ہوں، اخلاقی سمجھتا ہوں، کرتا ہوں.
ایسا لگتا ہے کہ کردار میں بھی اخلاق کے قائل ہو.
ضرور.
اتنی خوش اخلاقی تمہیں پریشان نہیں کرتی؟
مجھے صرف جینا ہے.
یہ اہم نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، اہم یہ ہے کہ تم ہوش میں ہو کہ نہیں. علی رضا، اگر میں تمہاری جگہ ہو تو ایسے حالات سے ڈرتا.
میں بھی ڈر رہا ہوں. ایسی ہی تربیت ہوئی ہے کہ ہمیشہ ڈریں ہر چیز سے، بڑوں سے تاکہ انہیں کوئی بات بری نہ لگے، چھوٹوں سے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، دوستوں سے کہ خدا نہ خواستہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں، دشمن سے کہ کبھی ہمارا پیچھا نہ کرنے لگے. لیکن میں ایک بار نہیں ڈرنا چاہتا، ایک بار ہمت کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ڈروں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے.
تم غلطی کر رہے ہو.
آپ نے اب تک غلطی نہیں کی ہے. غلطی کی ہے، لیکن اس کا نام تجربہ رکھ دیا ہے. آپ کی نسل والوں نے اپنی تمام غلطیاں ایک کہانی کی شکل دے کر کتاب کی صورت میں بازار روانہ کر دی ہیں. ایک بار مجھے بھی غلطی کرنے دیں، ایک بار مجھے بھی چوٹ کھانے دیں تاکہ میں خود سمجھ سکوں کہ غلطی میں نے کی ہے. لیکن وعدہ کرتا ہوں ان غلطیوں کو نہیں چھپاؤں گا.
بیٹا، دوسروں سے عبرت حاصل کرو، دوسروں کے لیے عبرت نہ بنو.
مجھے بھی کہانیاں لکھنے دیں تاکہ بعد میں اپنے پوتوں کو سنا سکوں.
یہ آخری فیصلہ ہے؟
مجھے معلوم ہے کہ آپ ناراض ہو سکتے ہیں. فریدہ مومانی کی گاڑی بھی بہت کام آئی، لیکن اب تو مجھے واپس کرنی پڑے گی. خدا حافظ. مجھے معاف کر دیں. आप भी मुझे माफ कीजिएगा।
यहाँ कोई तुम्हारे जाने से खुश नहीं है।
शायद मैंने ऊंची आवाज में बात की, माफ कीजिएगा।
कोई बात नहीं, तुम तो बाप बेटे की तरह हो।
मुश्किल यही है, वो मेरे बाप नहीं है। खुदा हाफिज।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम शुको जी, कैसी हो? सुबह से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी, कुछ काम पड़ गया इसलिए नहीं कर पाई। शुकू, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? नहीं, कहीं नहीं जाना है, घर पर ही हूँ। तो फिर जल्दी आना, इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़।
क्या हमने जो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप से इनकार किया तो नाराज़ तो नहीं हुए?
अरे अरे भाई, नहीं,
हम सिर्फ अपनी दोस्ती को महफूज करना चाह रहे थे।
समझ रहा हूँ।
शाबाश अकलमंद आदमी, आइसक्रीम खाओगे?
रुको, मैं लेकर आता हूँ।
नहीं, कहाँ जाओगे, बैठो, हम लेके आते हैं। तुमको नहीं मालूम कहाँ से लेनी है? और हाँ, घपला भी हो सकता है, जब तुम्हारे ऑफिस आएंगे तो तुम खिलाना।
जनाब,
जी
तारीख़ बेहकी है क्या?
एक मिनट, अभी इसके मालिक आते होंगे।
क्या आप ही दे सकते हैं? मैं ज़रा जल्दी में हूँ।
तारीख बहकी फरमाया था ना? तारीख बहकी, तारीखी किताबें किधर रखी हैं?
तीन जिल्द है, मेरे ख्याल में वो पीछे होंगी।
जी हाँ, अभी लाता हूँ। मुतरमा, ये तो तीन जिल्द नहीं है, एक ही जिल्द है। इसकी कीमत भी।
अच्छे दुकानदार नहीं बनेंगे आप कभी। सलाम अलैकुम।
अलैकुम अस्सलाम। ये मुतरमा जो यहाँ थी कहाँ गई?
मैंने देखा चली गई। और माफ कीजिएगा कि यहाँ पे डिस्टर्ब किया है, आप कॉलेज तो आते नहीं हैं, घर पर भी नहीं रहते, अपना मोबाइल सिम भी तो भेज चुके हैं।
कुछ दिनों तक तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी खिदमत में हूँ।
मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आपसे कहूँ या ना कहूँ, लेकिन इसकी उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को स्कूल के बच्चों की जज्बाती बातें ना समझिएगा। आपसे ये भी ख्वाहिश करती हूँ कि आप ये ना कहिएगा कि दुनिया को तीन तलाक दे चुके हैं। और क्या बताऊँ, ये कि अभी आप इन बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, या ये कि इन दिनों आप मेरे या किसी और के बारे में या वही तारीख बहकी के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
आप कहना क्या चाहती हैं?
प्लीज आप ऐसा ना कहिए, आप मुझे इतना जानते हैं कि मुझे पसंद करने लगे और समझते हैं कि हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे।
असल में मैं इन हालात में नहीं हूं जो एक सही। देखिए, मैं अभी इन बातों पर वक्त सर्फ नहीं कर सकता। जल्द ही एक कंपनी खोली है, हजारों किस्म के कर्ज और सूद वगैरह देना है। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, क्या कहूँ। मैं इस दुनिया के तमाम इश्क इश्क के साथ तीन तलाक दे चुका हूँ, सिर्फ काम करना चाहता हूँ बस।
अभी एक और बात रह गई है, और वो ये है कि मेरी सोच अभी स्कूल के बच्चों की जैसी है।
मुझे हरगिज आपकी नीयत में कोई शक नहीं है, लेकिन
मुझे खुद ही सोचना चाहिए था कि एक लड़की ऐसी बातें करके खुद को ही ज्यादा जलील करती है।
वो आपकी गाड़ी है? वो फाइन मार रहा है।
कोई बात नहीं,
आप हमेशा मेरी बहन जैसी थी। मैं भी हमेशा एक राजदार भाई की तरह रहूंगा।
प्लीज बात इससे ज्यादा ना बिगाड़िए, बहुत सुन चुकी हूं। क्यों मुझे अजाब देना चाहते हैं आप?
नूशीन में लिखी थी, मैंने पूछा नुशी मलिकी थी।
तुम अब तक कहाँ रह गए थे?
बाहर खड़ा था कि लड़की चली जाए, देखो तो आइसक्रीम भी टिगल गई।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अली रजा यहाँ है?
नहीं तो क्या हुआ?
ये गाड़ी दरवाजे पे क्यों खड़ी थी? अली रजा के पास थी।
अरे मैं तो क्या बताऊँ, तुमने तो डरा ही दिया था। एक घंटे पहले जलाल लेके आए थे और वो भी चाबी देके चले गए। मेरे ख्याल में आज सुबह अली रजा ने कंपनी जाके गाड़ी वापस की थी, उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया।
मैं जानती थी, अब क्या करूँ मैं?
क्या है शकू, क्या हुआ?
अली रजा के लिए परेशान हूँ, कसम से अब मैं थक गई हूँ।
फरजा साहब, अगर रफी साहब के सामानों में से कोई खास चीज मद्देनजर हो तो बता दे, शायद मैं ले सकूं।
नहीं, कोई खास चीज नहीं, यादगार चीजें, उन्हें खराब नहीं होने देना चाहता।
कहिए तो तमन्ना साहब से बात करूं?
जरूरत नहीं है, मैं खुद जरीन के पास जाऊंगा।
जैसा आप समझे, खुदा हाफिज। हेलो, सलाम अलैकुम मैडम। तुम कुछ नहीं बोलना, मैं ही बात करूंगा।
पैमान,
क्या है?
वाकई ऐसी जगहों पर अरबों के एग्रीमेंट होते हैं।
तुमने अभी देखा ही क्या है? संभल के चलो।
आइए।
तेलेमान साहब, ये अली रजा फहीम साहब है जिनके बारे में मैं कब बात कर रहा था।
तो बताएं कितने पैसों से आपका काम हो जाएगा?
50 मिलियन। तुम
तो 83 मिलियन का चेक जमा कर दें, 50 मिलियन हमसे ले लें।
जमानत के लिए ना?
5.5%, 50 मिलियन का हर महीने का तकरीबन 3 लाख होता है और साल में होता है 83 मिलियन। वो चेक मैं पहले ही ले लूंगा और अगले हफ्ते तुम्हारे ऑफिस देखने आऊंगा।
ऑफिस किस लिए? आप तो अपना पैसा पहले ही लिए ले रहे हैं।
ठीक।
क्या ठीक है? मैं साल में कहां से 32 मिलियन दूंगा?
आप बाहर जाइए और इत्मीनान से बात कीजिए, जब फैसला कर लेंगे तो आ जाइएगा।
मैंने कहा ना ठीक है।
माफ कीजिए, दखल अंदाजी मकसद नहीं, लेकिन आप इतनी शुजात के साथ क्यों बिजनेस करना चाहते हैं? चौराहे पे खड़े होकर कुछ बेचते तो बेहतर होता, रात में भी पैसे इकट्ठे करके जेब में रखते।
दिलवान साहब, मैंने कहा ना ठीक है।
नहीं भाई, मैं एक ताजिर हूं, अपने मेरे काम में रिस्क बहुत है। मेरी टेबल में इतने सारे चेक पड़े हैं कि जिन्होंने मुझसे पैसे लिए थे और बाद में निकल लिए थे और इस वक्त जेल में आराम फरमा रहे हैं।
नहीं जाना, मैं या तो नहीं लेता और अगर ले लेता हूं तो या तो वापस करता हूं और अगर वापस नहीं कर पाया तो खुद ही जेल चला जाता हूं।
तुम्हारे जेल जाने से मेरा क्या फायदा? मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, अच्छी जिंदगी गुजारो और पैसे भी देते रहो।
दिलवान साहब, मैं इनकी गारंटी लेता हूं, बहुत होशियार लड़का है।
स्टूडेंट हो?
जी हाँ, लेकिन इन तमाम बातों के अलावा 32 मिलियन बहुत ज्यादा है।
बेटे, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुझसे लोन ले सकें। अगर तुमको इजाजत मिली है कि इस कुर्सी पर बैठ सको तो वो सब मरहूम रफी मलकी की मोहब्बतों की वजह से है।
जी बोलिए।
सलाम अलैकुम नौशीन।
कोई काम हो तो बताइए।
जर्रीन से काम था।
महबूबा, मलिकी साहब को मैडम से काम है।
अस्सलाम अलैकुम फरजाद साहब।
मैंने कहा मलिकी साहब बहरी हो? जब अंदर आ जाए तो महबूबा आपकी हेल्प करेगी। मैडम रफी साहब के कमरे में है।
अस्सलाम वालेकुम फरजाद साहब।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो?
आप कैसे?
ठीक
हूं जनाब। आप तो मोटे होते जा रहे हैं, लग रहा है आज़र मैडम का खाना भी आपको लग रहा है।
ज़र्रीन कहाँ है?
रफी साहब के कमरे में।
तुम्हारे माँ बाप ने ये तमीज नहीं सिखाई कि कमरे में जाने से पहले इजाजत लो?
मेरे बाप जब तक जिंदा थे तो किसी को इजाजत नहीं थी कि उनकी कुर्सी पर बैठे।
और मैंने मेरी नहीं पूछा तुम्हारा बाप कौन था। मैंने पूछा है कि तुमको ये नहीं सिखाया है कि कहीं अंदर जाने से पहले इजाजत।
देखो जर्री, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। और ये कि मेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है, किसी से क्या मतलब? नौशीन से भी कह देना इतनी नफरत ठीक नहीं।
नौशीन खानदानी लड़की है, इस मामले में अपने बाप पर पड़ी।
रफी दिल में नफरत नहीं रखते थे।
रफी की जायदाद तुमको पहुंची जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको मुझसे ज्यादा जानती हो।
रफी को बेहतर जानती हो, बताओ क्यों ऐसी वसीयत की?
ए लड़के, अगर तुमको बड़े छोटे की तमीज नहीं है तो कम से कम अपने बाप की बीवी की इज्जत जरूर करो, जिसके चाहने का दम बरते।
ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी वसीयत क्यों की और उसके कुछ दिन के अंदर मार दिए गए?
उनकी कब्र की जगह जाओ, इन्हीं से पूछ लो। जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना और महबूबा से भी कहना कि किसी को पूछे बगैर घर में ना
आए। कितने का चेक काटूं इस टेबल के लिए, इस कुर्सी के लिए जिस पर तुम बैठी हो, उस पेन के लिए जो तुम्हारे हाथ में, रफी के असा, उनकी घड़ी, वो सब चीजें जो मेरे बाप की यादगार हैं। और हाँ, बाबा की पेंटिंग कहाँ गई?
स्टोर में है, वो ले जा सकते हो।
अम्मी की भी तमाम चीजें मुझे चाहिए, उनकी तस्वीरें, उनके कपड़े।
रफी का ध्यान सिर्फ काम में था, फालतू पैसे खर्च नहीं करते थे। अब क्या हुआ कि वारिस फजूल खर्च हो गए?
उनकी कीमत बताओ।
उनकी कीमत? उनकी कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी है। वो इज्जत जो बर्बाद हुई, वो उम्र है जो दूसरे के लिए फालतू में बसर हुई, कि जिसने कभी मुझे और मेरे बच्चों को प्यार नहीं किया।
मेरे बाप के सामान रहने दो, लेकिन अपनी अम्मी के सामान ले जाऊंगा, उनकी जरूरत तो नहीं ना।
इस घर के सामान इस घर का हिस्सा है, इस घर को तो नहीं हड़पना चाहते।
ये कैसी बात है, आप मेरी माँ जैसी।
अगर एक बार और मुझे माँ कहा तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। इस घर से निकलो, हमेशा के लिए निकलो, निकलो।
रफिया मलिकी, उसका मरना भी हमारे लिए मुसीबत है। मैं रफिया मलिकी के साथ जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। और क्या तुमने जाकर उससे कहा कि मुझे रफिया मलिकी ने तारुफ कराया है?
अरे भाई परेशान मत हो, तुम अभी गुस्से में हो, समझ में नहीं आ रहा है रफी मलिकी कौन होता है। ऐसी बातें वो करते हैं जो कुछ नहीं जानते। वो समझते हैं कि हम ऐसी बातों में आ जाएंगे। हम जाके फरजाद से कहेंगे और वो फरजाद के करीब हो जाएगा, इसीलिए कहता है कि रफी मलिकी वजह से मान गया है।
मुझे नहीं पता कि कब इस फैमिली से मुझे छुटकारा मिलेगा।
कभी नहीं। इसीलिए कहता हूँ मुझे बोलने दो, इसमें कोई ना कोई वजह है। आज सुकून से सो जाओ, कल पहले चलेंगे वो ऑफिस देखने और फिर दलमान के पास चलेंगे।
अम्मी अम्मी,
क्यों देर लगा थी, परेशान हो रही थी मैं।
शुक्रिया।
पसंद आई?
जी हाँ। किस लिए है?
आओ बैठो, बताती हूँ। बस वक्त माँ अलबत्ता अपने बच्चों को बिला वजह कुछ ना कुछ देती रहती है। बस
आई लव यू अम्मी जान।
आई लव यू टू। लेकिन ये नहीं जानती कि क्यों कभी कभी बच्चे अपनी माओं को शौक दिलाते हैं।
क्यों, क्या हुआ?
नौशीन, क्या हमने एक दूसरे से कोई बात छुपाई है कभी?
नहीं, कभी नहीं।
अलबत्ता ऐसा भी नहीं।
अम्मी हमको भी घबराहट हो रही है, अब बताइए तो क्या हुआ है?
10 मिलियन तुमान की तुम्हें क्या जरूरत थी?
आपने मेरे सामान की तलाशी ली है?
नहीं, इत्तेफाक से तुम्हारी चेकबुक मिल गई थी।
तलाशी ना ली थी तो भी आपसे बताती।
मैंने पूछा 10 मिलियन अपने अकाउंट से क्यों निकाला?
जरूरत है।
जरूरत ही तभी तो निकाला था, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन किस लिए?
अली रजा ने कंपनी खोली है
तो
उसे मदद करना चाहती हूँ।
उसकी मदद करना चाहती हूँ? तुम्हारी कम बेइज्जती हुई है, बेइज्जती भी बर्दाश्त करके तुम आगे बढ़ी, इतने प्लान बनाकर आजर को उससे दूर किया, अभी तक तुम्हें सबक नहीं मिला?
अली रजा इस काबिल है कि इंसान उसकी मदद करे।
और तुम्हारी काबिलियत, जलील हो, बात है सुनो, छोटी बनो।
अम्मी से मैं चाहती हूँ और जो भी करूँगी कि अपने दिल के लिए, चाहे वो समझे और मेरी कदर करे और ये ना समझे।
नौशीन मेरी बात गौर से सुनो, अली रजा के बारे में सोचना बंद कर, आज ही अपने पैसे अकाउंट में वापिस डालोगी, मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती।
तुमने तो डरा दिया, क्यों अंधेरे में बैठे हो?
लाइट बुझा दो।
फिर कुछ हुआ है?
नहीं, जाओ सो जाओ।
अपने पापा के यहाँ गए थे?
क्या फर्क पड़ता है?
अपने को परेशान मत करो, क्या फर्क पड़ता है उनका रवैया कैसा है? اتفاق سے انہوں نے اپنی حیثیت دکھائی ہے اور یہ تمہارا بڑکپن تھا جو پھر سے گئے تھے۔
میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ ہاں تو سو جاؤ۔ قسم سے تھک گیا ہوں بہت زیادہ، اپنے سے بھی مجھے چڑھا رہی ہے، دوسروں کو تو چھوڑو، یقین کرو اگر اپنے آپ سے بھاگ سکتا تو اب تک یہ کام کر چکا ہوتا۔
اب کیا ہوا؟
اب تک اپنے حق کے لیے ذلیل ہوئی ہو؟ کچھ دن پہلے تک میری بھی ایک مکمل فیملی تھی، زرین میری ماں تھی اور نوشین میری بہن، بابا کے بعد اب کوئی میرا نہیں۔
میں ہوں نا۔
اب جا کر تم سو جاؤ، مجھے اپنے آپ پر چھوڑ دو۔
فرزاد تم اکیلے نہیں ہو،
تم صبح تک یہاں بیٹھ کر سوال جواب کرو گی۔
سود جو لیا ہے نا وہ پیسے واپس کر دو۔
یہ پیسے کس نے دیے؟ جلال نے دیے ہیں۔ میں نے جلال صاحب سے کہا تھا کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، ان سے کہہ چکا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، نہ آپ کے شانوں پر یا کسی اور کے، وہ تو خود ہی پریشان رہتے ہیں۔
اس معاملے میں تیزی نہیں کر رہے ہو کچھ؟
نہیں امی، میں نہیں سمجھ پایا۔ حقیقت میں مجھے اب تک یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے ممانی کے بھائی کیوں میرے باپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ ہاں، چونکہ یتیم تھا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ خود کبھی باپ نہیں بنے تو سب ان کے بیٹے کی طرح ہو سکتے ہیں۔ نہیں امی، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔
علی رضا، یہ پیسے جلال نے نہیں دیے ہیں، میں نے شمال والا گھر بھیجا ہے۔ کیا رات تک وہیں کھڑے رہو گے؟ کمپنی کھولنا ہے نا تم کو، جاؤ جا کے اپنا کام شروع کرو۔
جی امی جان، ضرور۔
ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔
اینٹیک ہے یہ؟
واقعی مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ مجھے یہ چیزیں رفیع کے سامان سے ملی ہیں، میرے خیال میں چھپا کے رکھا تھا، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ان کے یونیک چیزوں کے معاملوں سے بے خبر نہیں ہو۔
असल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, यानी तकरीबन कुछ नहीं जानता।
तस्वीरें मुझे वापस करो। तुम मेरे लिए अच्छे पार्टनर नहीं हो। हमारी शराकत हमारे तसव्वुर से पहले ही खत्म हो गई। अब जब ऐसा हो गया तो शायद मुझे उस कर्नल से, क्या नाम था, हाँ आकाशा, उससे मदद ले सकूं।
मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अकेला थोड़ी कुछ करूंगा। और इस मामले में भी यकीन कीजिए, कसम खा के कहता हूं कि सिर्फ जानवरों की तरह से दौड़ता था। असली काम वो खुद करते थे, छोटे मोटे काम मुझे सपोर्ट कर देते थे, और जब अहम एग्रीमेंट का वक्त आता था तो मुझे वापस कर देते थे बस।
यानी उनकी जगह भी नहीं मालूम है ना?
अब इतना भी बेवकूफ नहीं हूं।
तो फिर जल्दी से ये सब भेज दो।
इतना आसान भी नहीं है।
तो क्या तुम रफी के दोस्तों को नहीं जानते?
अगर पहचानूं भी तो मेरे साथ काम नहीं करेंगे।
वाकई अजीब है। अब जब सोने की कान तक पहुंच गए तो ये नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए।
मैं बाहर जा रही हूँ।
गाड़ी मत ले जाना, मुझे जरूरत
है। बहुत देर हो चुकी है, बहुत जरूरी काम है।
मेरा काम भी जरूरी है, तेहरान तक जाना है।
अगर इजाजत दे तो मैं पहुंचा दूं।
नहीं, टैक्सी से चली जाएगी।
मैं पैमान के साथ जा सकती हूँ। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ।
जाओ, लेकिन फालतू बातें ना करना।
वो घड़ी भी तो लगा ली है।
तुम फिलहाल कुछ नहीं कहना, समझे? देर क्यों लगा रहे हो? सुना नहीं कि उसको जल्दी है?
अरे नुशीन साहब, आगे ही बैठ जाती आराम से।
अरे जल्दी चलो, देर हो चुकी है।
जी जरूर। बहुत चुप हैं। नई घड़ी मुबारक।
अम्मी का गिफ्ट है। अच्छा है ना?
आपको पसंद आनी चाहिए।
बहुत दिनों से एक नई घड़ी का दिल चाह रहा था। धीमे चलाओ।
आपको देर जो हो रही है, आप आराम से बैठे, कुछ नहीं होगा।
यही रोक दो।
मुझे लगा आपको कॉलेज जाना है।
मैंने कहा रोको।
जरूर।
बहुत बहुत शुक्रिया।
नुशीन साहिबा, यहीं पर आपकी वापसी का इंतजार करूं?
जी नहीं, खुदा हाफिज। जी फरमाइए।
देख रही हूँ।
मर्दाना ड्रेस चाहिए?
फर्क नहीं पड़ता।
डिजाइन है, इटली का है, चेक कीजिएगा।
नहीं, पहले डिजाइन पसंद आनी चाहिए। मैं बिल्कुल मायूस होकर यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता है। अगर चाहे भी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अलीरजा की मदद करें। वो एक गलत काम करना चाहता है।
अब आपके लिए क्या करना चाहिए?
इजाजत दे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पहले सोचती थी कि मैं अलीरजा के साथ खुश रह सकती हूँ। समझती थी कि वो ऐसा इंसान है जो हमेशा सच बोलता है, उसके साथ सच्चाई के साथ रहा जा सकता है। लेकिन ये नहीं समझ पा रही कि अगर एक लड़की अपने जज्बात के बारे में कुछ कहना चाह रही है तो कोई इसको यकीन क्यों नहीं
करता? गुस्सा मत करो प्लीज, मैं किसी की नाराजगी नहीं देख सकता।
तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करते?
मेरी बेटी, जो बातें कह रही हो ठीक है, लेकिन ये भी सोचो कि शायद किस्मत में नहीं है।
कल तक आप कहते थे कि मैं गलत कर रही हूँ, आप जब मायूस हो चुकी हो तो किस्मत की बात करने लगे।
ये क्या है?
ये रखे, इसे अलीरजा को दे दीजिएगा, लेकिन ये ना बताइएगा कि किसकी तरफ से है।
तुम कितना प्रॉफिट लोगी? 2%, 3%, 4%? लेकिन पहले बता दूं कि इसे पहले वाले ने 5.5% कहा था। अलबत्ता अलीरजा में ये समझते हैं कि ये सूद नहीं है।
आप क्यों इंसान का दिल तोड़ना चाहते हैं?
तुम खुद ही क्यों नहीं दे देती?
अलीरजा मुझसे पैसे नहीं लेगा।
शम साहिबा, मलिकी साहिबा से अब कोई काम नहीं है। कोई और तो बाहर नहीं है?
मलिकी साहिबा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कोई खास काम नहीं था, आपका इंतजार कर रहा था ताकि पहुंचा दूं। आप उससे नाराज हैं क्या?
क्या आप इस रेडियो की आवाज कम कर सकते हैं?
जरूर। असल में मैंने सोचा कि आपको अकेले जाना पड़ेगा। असल में बहुत परेशान लग रही हैं, उस पर उस वकील के दफ्तर से बाहर निकली, मैंने सोचा शायद कोई खास काम हो तो मैं भी हाजिर हूं। मैं भी थोड़ा बहुत कानून और वकालत की पढ़ाई पढ़ा हुआ हूं।
मेरी मुश्किल कानूनी नहीं है, काश सारे काम वकील लेने से हल हो जाते।
कुछ भी हो मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ आप मेरे हवाले कर दें।
नहीं समझ पा रही हूं कि तुम कितना मुझे समझोगे। मिसाल के बारे में बात करना कुछ आसान नहीं है, लेकिन
लेकिन क्या
उसमें कोई खास मुश्किल नहीं है कि जो तुम ना कर पाओ, लेकिन सबसे अहम तुम्हारा राजदार होना है।
अगर जरीन साहिबा की बात हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, वो सब कुछ जानती है।
बहरहाल तुमने तो जरीन और ना ही किसी और से इस मुद्दे पर बात नहीं करोगे।
यकीन रखिए मुतमईन रहे जब तक आप नहीं कहेंगे तो मैं किसी को कुछ
वादा करो।
पक्का वादा। ये क्या है? लेटर है।
लेटर क्या है? ये एक चेक है 10 मिलियन का।
लेकिन किसके लिए?
इतने सवाल करते हो पैमान, तुम बस वही काम करो जो तुमसे कह रही हूँ। ये चेक अलीरजा तक पहुँचाना है।
मैं नहीं समझा, अलीरजा फहीम, 10 मिलियन का चेक, लेकिन
मैंने कहा ना जज्बाती मसाइल के बारे में कुछ ना पूछो। बस याद रखना किसी कीमत पर मेरा नाम नहीं आए वरना वो नहीं लेगा। कहना तुम्हारा पैसा है। पैमान अब से तुम मेरे राजदार और अमीन हो। याद रहे कि तुमने मुझसे वादा किया है अली रजा से कुछ नहीं कहना। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ।